वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी और प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है और ना ही किसी तरह के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। आप सुन रहे हैं काल शंकु पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह है भाग 10, लेखन और आवाज दीपक मिड़तवाल। तूफान और बारिश का दौर शुरू होने के बाद अनंत ने फिर से कहा, अब तो पिलाते। उस आदमी ने बीड़ी का बचा हुआ हिस्सा अनंत के मुंह में ठूंस दिया। तभी अनंत ने गौर किया कि दूसरे तंबू से बदमाशों का सरगना और वो बूढ़ा दोनों बाहर होती बारिश के बीच आसमान की तरफ देख रहे थे। थोड़ी देर में बारिश रुक गई। वो बूढ़ा आदमी और बदमाशों का सरगना अभी भी कुछ बातें कर रहे थे। अनंत को ऐसा लगा कि उनकी बातचीत का टॉपिक शायद अचानक से आए तूफान और बारिश ही थे। तभी वो आदमी जो अनंत और राज की पहरेदारी कर रहा था, वो भी उन दोनों के पास पहुंच गया और उन्हें कुछ बताने लगा। उसके इशारों से अनंत को समझ आ गया कि यह जरूर अभी थोड़ी देर पहले अनंत के साथ हुई उसकी बातचीत के बारे में बता रहा था। उसकी बात सुनने के बाद वो दोनों अनंत और राज के तंबू की तरफ देखने लगे। ये देखकर राज ने कहा, बॉस ये क्या किया आपने? क्या जरूरी था उसे तूफान के बारे में बताना? अनंत ने हंसते हुए कहा, राज तुझे ऐसा नहीं लगा कि वो लोग इस बेमौसम की बारिश से काफी परेशान हैं और इस तूफान सिंह ने उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया है? सर क्या वाकई में उसका नाम तूफान सिंह है? राज ने अपनी शंका जाहिर की। जवाब में अनंत ने कहा, जो भी हो लेकिन अब तक तो तुझे समझ आ गया होगा कि हमें किस्मत ने सही जगह पहुंचा दिया है। ये लोग और खासकर ये बूढ़ा जरूर उस कोन के बारे में जानते हैं और अगर ऐसा है तो ये हमें मारेंगे नहीं, राज ने दबी जबान में कहा। अनंत उसकी तरफ देखकर हंस पड़ा। रोशनी होने में भी 5-6 घंटे हैं, ये अभी एक बार हमारे पास फिर से आएंगे। तभी कुछ सोचकर अनंत ने कहा, तुझे भूख लग रही है? नहीं सर, जब मौत सिर पर नाच रही हो तो सारी भूख प्यास मिट जाती है, अनंत ने जवाब दिया। तू चिंता मत कर, हम लोग सुबह गेस्ट हाउस में जमकर खाना खाएंगे। अनंत के जवाब पर राज मुस्कुराकर रह गया, लेकिन अनंत जानता था कि यह सुबह इतनी आसानी से नहीं होने वाली है। कुछ घंटे बाद आसमान में सुबह की हल्की लालिमा दिखाई देने लगी थी कि तभी किसी आहट से अनंत की नींद खुल गई। उसने देखा कि राज भी वहीं सिर टिकाए सो रहा था। कुछ दूरी पर तूफान सिंह भी जमीन पर ही लेटा था। अनंत की निगाह उस तरफ गई जहां से उसे आहट सुनाई दी थी। अंधेरे में उसे 3 साए अपनी तरफ आते दिखाई दिए। उन्हें पहचानना कोई मुश्किल नहीं था। उनमें से एक बदमाशों का सरगना, दूसरा बूढ़ा आदमी और तीसरा उन्हीं का कोई साथी था। तीसरे आदमी ने पहरेदारी कर रहे आदमी यानी कि तूफान सिंह को झिंझोड़कर उठाया। यह देखकर अनंत को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपनी हंसी को जाहिर नहीं होने दिया क्योंकि उसे लग गया था कि उनका बुरा समय शुरू हो चुका था। इस बार उस बूढ़े ने अनंत से पूछताछ करनी शुरू की। जिस तरह से वो बोल रहा था उसकी आधी बातें भी अनंत समझ नहीं पा रहा था। तभी बदमाशों का सरगना उस पर चीख पड़ा, सच सच बता दे तू क्या जानता है, तुझे इस निशान के बारे में कहां से पता लगा? अनंत ने जवाब दिया, मैंने बताया तुम लोगों को, मैंने किताब में इस बारे में पढ़ा था, यहां के ग्रंथालय में वो किताब रखी है। लेकिन उस किताब में तूफान के बारे में कुछ नहीं लिखा था, बदमाशों के सरगना ने बड़ी गहरी बात कह दी थी। अनंत ने बात को संभालते हुए कहा, वो तो मैंने ऐसे ही अंदाजे से कह दिया था, मुझे बीड़ी पीनी थी। अनंत ने उस बूढ़े की तरफ देखा जो इस वक्त बीड़ी फूंक रहा था। वो बूढ़ा गुस्से में अनंत के पास आया, यो सब तने मजाक लाग रहे है? उसने सच में अनंत के चेहरे पर जलती हुई बीड़ी लगा दी। अनंत कराह उठा। वो बूढ़ा आगे बोला, सांची सांची बता दे मारे कने ज्यादा टेम कोनी है। ये कहते हुए उसने पास में रखी एक लाठी उठा ली। बदमाशों का सरगना एक बार फिर से दहाड़ उठा, बोल नहीं तो। तभी राज बीच में बोल उठा,
ठहरो मैं बताता हूं।
सभी के साथ अनंत ने भी राज की तरफ देखा। अनंत ने उसे अपनी मौन सहमति दे दी थी। राज कुछ बोलने लगा, लेकिन तभी बाहर से कुछ गाड़ियों की आवाजें सुनाई दी और साथ ही सुनाई दिया लोगों का शोर, पुलिस पुलिस। ये सुनते ही बूढ़ा चिल्लाया, पुलिस कट्ठे से आ गई।
बदमाशों का सरगना भी हैरान था। उसकी हैरानी से लग रहा था कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि पुलिस यहां आ सकती है। उसने गुस्से से अनंत की तरफ देखा और कहा,
तेरी गाड़ी में GPS लगा है?
अनंत ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर से दहाड़ उठा,
मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
गाड़ियों की आवाज इतनी पास आ चुकी थी कि अगर अब भी वो लोग वहां से नहीं भागे तो उनकी पुलिस से मुठभेड़ निश्चित थी। सारे बदमाश बाहर की तरफ भाग छूटे, लेकिन अनंत ने गौर किया कि बूढ़ा अपने तंबू की तरफ जा रहा था। तभी बदमाशों का सरगना उस पर चिल्लाया,
भाग डोकरा, पुलिस आ गई है।
उस बूढ़े के कदम कुछ लड़खड़ाए और उसने हसरत के साथ अपने तंबू की तरफ देखा, लेकिन तब तक उसके साथी अपनी जीप स्टार्ट कर वहां से रवाना हो चुके थे। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग आए और उस बूढ़े को अपने साथ बैठा कर ले गए। अनंत को यह देखकर हंसी आ गई। तभी उसका ध्यान राज की तरफ गया। राज की आंखों में आंसू आ रहे थे। अनंत ने उसे देखकर कहा,
भाग गए वो लोग, हमारी किस्मत अच्छी थी।
इसी बीच एक पुलिस जीप वहां आकर रुकी, जिसमें से कुछ कांस्टेबल्स चिल्लाते हुए उन तंबुओं की तरफ भागने लगे। पुलिस जीप के पीछे एक दूसरी SUV भी आकर रुकी, जिससे सुशांत और ज्ञान दोनों तेजी से उतर कर आए। अनंत ने आवाज दी,
हम इधर हैं।
थोड़ी देर में अनंत और राज आजाद थे। पुलिस वाले उनसे अपनी पूछताछ कर रहे थे, जबकि कुछ पुलिस वाले तंबुओं की तलाशी ले रहे थे। अनंत ने सुशांत को साथ लेकर उस तंबू की तरफ रुक किया जिसमें रात को वो बूढ़ा रुका हुआ था। वहां पुलिस वाले सामानों को उलट पलट कर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ मिला था। अनंत ने पूछा, कुछ मिला? एक कांस्टेबल ने जवाब दिया,
ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी अफीम और गांजा।
अनंत भी उनके साथ वहां रखे सामानों को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ढूंढ रहा है। तभी उसकी निगाह एक झोले पर गई। उसने सुशांत को इशारा किया कि वो पुलिस वालों को बातों में लगाए। सुशांत ने उसका इशारा समझा और पुलिस वालों के साथ बात करने लगा। अनंत ने उस झोले में देखा तो उसमें उसे कुछ पुराने कागजों का पुलिंदा दिखाई दिया। इन कागजों में वही निशान बना था जैसा शंकु पर था। उसने चुपचाप वो कागजों का पुलिंदा अपनी शर्ट में रख लिया और वहां से बाहर निकल आया। पुलिस वालों से ही उन्हें पता लगा कि ये हाईवे पर लूटपाट करने वाले खतरनाक गिरोह के सदस्य हैं। हर 2-3 महीनों में ये इस तरह की वारदात करते रहते हैं। अनंत ने पुलिस को भी उस गिरोह के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया, बस यही बताया कि शायद ढाबे पर रुकते वक्त इन्होंने गाड़ी के टायर पंक्चर कर दिए थे और उसके बाद वो लोग इन दोनों को यहां ले आए थे। लेकिन पुलिस ऑफिसर ने पूछ ही लिया,
ये बात समझ नहीं आ रही कि उन लोगों ने रात भर आप लोगों को पकड़कर क्यों रखा, क्या मकसद था उनका? क्योंकि अभी तक तो ये लोगों को लूटते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं और गाड़ियों को दूसरे स्टेट में बिकने के लिए भेज देते हैं।
अनंत ने हंसते हुए सच छिपाने की कोशिश की, पता नहीं साहब, मेरी शक्ल पसंद आ गई होगी। अनंत की बात पर पुलिस ऑफिसर का ध्यान उसके चेहरे पर जले हुए निशान पर गया। उसने पूछ ही लिया,
ये निशान तो ताजा लग रहा है, इन लोगों ने कुछ किया था क्या आपके साथ?
अनंत ने फिर से झूठ कहा,
नहीं सर, ये तो पहले का है।
राज समझ गया कि अनंत पुलिस से बातें क्यों छिपा रहा है, इसलिए पुलिस ऑफिसर के जाते ही उसने अनंत से कहा,
अनंत सर, आपको बता देना चाहिए था कि ये उन लोगों ने किया आपके साथ।
राज की बात सुनकर सुशांत और ज्ञान चौंक पड़े, लेकिन अनंत ने उन्हें शांत रहने का इशारा करते हुए जवाब दिया,
फिर हमें पूरी बात बतानी पड़ती और मैं नहीं चाहता कि पूरा राज खुलने से पहले इस मैटर में हम लोगों के अलावा कोई और इन्वॉल्व हो, खासतौर से पुलिस तो बिल्कुल नहीं, तो आप पीछे नहीं हटेंगे?
राज ने जब यह बात कही तो उसकी आवाज में दर्द साफ साफ महसूस हो रहा था। अनंत ने जवाब में कहा,
गाड़ी में चलो, फिर बात करते हैं।
वो बदमाश अनंत के फोन और दूसरे सामानों के साथ SUV की चाबी भी ले जा चुके थे, इसलिए SUV को वहीं छोड़कर वो लोग गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए। गाड़ी में सुशांत ने बताया कि वो पिछली रात को ही दिल्ली से यहां आया था, लेकिन अनंत का फोन आउट ऑफ नेटवर्क था। देर रात तक अनंत और राज के गेस्ट हाउस ना लौटने पर उसने गाड़ी का GPS ट्रैक किया, जिसके बाद पुलिस की मदद से वो लोग यहां तक पहुंच पाए थे। अनंत ने गाड़ी में ही उन लोगों को अब तक की सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताई, जिसे सुनकर सुशांत और ज्ञान दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर में अनंत ने कहा, अब तक की सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं, रात को जो कुछ हुआ तुम लोगों को पता है, इसलिए राज मैं एक बार फिर से तुझे कहूंगा, तू वापस दिल्ली चला जा। लेकिन राज के पास जवाब तैयार था, नहीं सर, इतना आगे बढ़कर अब पीछे हटने का मन नहीं है। राज के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। सुशांत बोल पड़ा, यार दो दिन हम दिल्ली क्या चले गए, पीछे से बच्चा तो बड़ा हो गया। गाड़ी में एक ठहाका गुंज उठा। अनंत ने आगे कहा, देखो हम दोनों के फोन तो जा चुके हैं, तुम दोनों अपने अपने फोन संभाल कर रखना, मैं किसी को फोन दिलाने वाला नहीं हूं। किसी के कुछ कहने से पहले सुशांत ने कहा, एक बात बता, तेरे फोन से अगर उन्होंने डिटेल निकालने की कोशिश की तो? अनंत ने राज की तरफ देखा, इशारा समझकर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट राज बताने लगा, सर इस बात की पॉसिबिलिटी काफी कम है, क्योंकि इनके फोन में 128 GB इंटरनल मेमोरी है, कोई मेमोरी कार्ड नहीं है, इसलिए फोन को ऑन किए बगैर डाटा निकालना आसान नहीं, और फोन के पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए भी एक बार फोन पर इंटरनेट ऑन होना जरूरी है। अगर ऐसा हुआ तो उनकी टावर लोकेशन का पता लग जाएगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 दिनों में फोन से डेटा या कोई दूसरी डिटेल निकाली जा सकती है। गाड़ी में थोड़ी देर सन्नाटा छाया था। आखिर राज ने ही बोलना शुरू किया, सर आज 14 फरवरी है, 15 फरवरी में बस एक दिन और, तो आगे क्या? अनंत ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, देखा आज 14 फरवरी है तो हम सब मिलकर वैलेंटाइन डे बनाने वाले हैं। गाड़ी में फिर से एक ठहाका गूंज उठा। थोड़ी देर में गाड़ी गेस्ट हाउस तक पहुंच चुकी थी। ज्ञान अनंत की एसयूवी को वापस लेने का बंदोबस्त करने चला गया। अनंत ने राज को आराम करने के लिए कह दिया और खुद कागज के पुलिंदे को लेकर बैठ गया। असल में ये सारे कागज के टुकड़े एक बड़े से चार्ट का हिस्सा लग रहे थे, और जब अनंत ने उन सबको सही तरह से जमा लिया तो जो तस्वीर सामने निकलकर आई उसे देखकर अनंत भौंचक्का रह गया। उसके मुंह से निकल पड़ा, ओह, इट्स नॉट पॉसिबल। असल में उस चार्ट पर एक चित्र बना हुआ था जिसमें जमीन पर वो शंकु रखा था और आसमान में ठीक वैसी ही ग्रहों की व्यवस्था दर्शाई गई थी जैसी उस शंकु पर बिंदुओं से बनी थी। अनंत सोच रहा था, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि इस शंकु का ग्रहों की इस पोजीशन से कोई ना कोई रिलेशन जरूर है, लेकिन ग्रहों की ये पोजीशन कब बनती है? एक मिनट, कहीं 15 फरवरी को तो नहीं बन रही? अनंत ने उसी वक्त इंटरनेट से 15 फरवरी को ग्रहों की व्यवस्था चेक की। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसे पता लगा कि ना केवल इस 15 फरवरी को ग्रहों की यह व्यवस्था बनने वाली है, बल्कि हर 100 साल बाद 15 फरवरी को ग्रहों की यह व्यवस्था आसमान में बना करती है। अनंत इस वक्त बड़ी तेजी से सोच रहा था। उसे समझ आ गया था कि हर 100 साल के अंतराल के बाद इस खास ग्रह व्यवस्था में यह शंकु कुछ काम आता है, लेकिन शंकु क्या काम आता है, शंकु कैसे काम करता है, इस बारे में उसे कुछ पता नहीं था। आप सुन रहे थे काल शंकु पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग 10, लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल।